नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के सिलचर में 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल राज्य के कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में भाजपा की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के राजनीतिक अभियान की शुरुआत का संकेत है। निर्वाचन आयोग ने कुछ दिन पहले कोलकाता में पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों से संबंधित बैठकें की थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत पहली पूरक मतदाता सूची अगले सप्ताह प्रकाशित हो सकती है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक सूची में 6 लाख से अधिक नामों की समीक्षा की गई थी, हालांकि लगभग 15 लाख नामों का निपटारा हो चुका है। इस बीच लगभग 35 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन मामलों का निपटारा भी शीघ्र ही हो जाएगा। भारत ने पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति को देखते हुए ईरान से ऊर्जा और वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से बात की। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने भारतीय जहाजों को जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति मिलने का संकेत दिया है। श्री फतेह अली ने नई दिल्ली में कहा कि भारत की ईरान से मित्रता है। उन्होंने कहा कि ईरान का मानना है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के साझा हित हैं।
हमारा मानना है कि ईरान और भारत मित्र हैं, हमारे बीच कई समानताएं हैं और भारत में राजदूत के रूप में मैंने आपसे कहा था कि युद्ध के बाद इस स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मदद की है।
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान के विदेश मंत्रियों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष को तुरंत समाप्त करने के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने तथा कूटनीति और संवाद के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति और आसियान पर इसके असर पर चर्चा के लिए आसियान के मौजूदा अध्यक्ष देश फिलीपींस ने सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की कल वर्चुअल माध्यम से विशेष बैठक बुलाई थी। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन धर्मशाला स्थित युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व महासचिव कुशल दास का कल 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। नवंबर 2010 में उन्होंने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव का पदभार संभाला, जिस पर वे एक दशक से अधिक समय तक रहे। युवा संगम के 6ठे चरण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत देश भर के युवाओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 मार्च है। इच्छुक युवा ebse.aicteindia.org वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और नवाचार को नजदीक से जानने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। और शतरंज में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। असम के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मयंक राज्य के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।